ओम शांति। सो क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सारा ऑडियंस यदि बीच में आ जाए तो विल लुक अ गुड नंबर एंड वी नीड योर कलेक्टिव परफॉर्मेंस फॉर दैट। द टॉपिक इज ऑन कलेक्टिव परफॉर्मेंस, सो सभी बीच में आ जाइए, बीच में। हाँ या इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस एंड टॉपिक तो बड़ा सुंदर है पैनल डिस्कशन का। सो माय प्रोफेशनल रोल इन मैक्सिमाइजिंग कलेक्टिव परफॉर्मेंस, एक होता है सिंगुलरली परफॉर्म करना कोई भी चीज, एंड जैसे आप हायर द कैडर जाते हो, मोर देन सिंगुलर परफॉर्मेंस यू आर टू डू विथ कलेक्टिव परफॉर्मेंस। माना यू ऑल्सो हैव टू परफॉर्म, बट ऑलवेज इट इज दैट यू हैव पीपल थ्रू होम यू हैव टू गेट थिंग्स डन। सो उस कलेक्टिव परफॉर्मेंस में टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स, व्हाट रोल कैन आई प्ले एज ए प्रोफेशनल। सो दिस इज द टॉपिक एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड। तो पहले मैं इस डिस्कशन में हमारे बीच है आज के इस पैनल डिस्कशन के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रताप मिड्डा भ्राता जी, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। आपसे निवेदन है आप स्टेज पर पधारे और उसके साथ साथ हाँ हम अच्छे से तालियां बजाएंगे और उनके साथ मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच डॉक्टर सुभाष चंद्र सोनी जी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर गुजरात स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन गांधीनगर। आप पहुंचे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सोनी जी? ओके, उनके साथी कोई इधर हो तो प्लीज कॉल हिम, ब्राता जी को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मिस्टर गौरव दास जी, चीफ जनरल मैनेजर ONGC असम। या तालियां बजाकर दास जी का भी हम इनवाइट करते हैं कि आप अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें, मिस्टर गौरव दास जी। मिस्टर प्रमोद चौधरी जी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर TCIL, आप पहुंचे हैं? हाँ जी, थैंक यू। प्रमोद जी आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और मिस्टर दिवाकर अग्रवाल जी, फॉर्मर डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल CPWD दिल्ली, आपसे भी निवेदन है आप आपका स्थान ग्रहण करें स्टेज पर, मिस्टर दिवाकर अग्रवाल जी। और राजयोगी भरत भूषण भाई जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस विंग, इंजीनियर साइंटिस्ट विंग, आपसे भी निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों की गड़गड़ाहट से हम इनवाइट करेंगे भ्राता भरत भूषण जी कि आप भी पधारे। एंड अभी आपने समझा होगा कि ब्रह्मा कुमारीज में कोई भी हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं तो पहले मेडिटेशन से आरंभ करते हैं। इसमें हम परमपिता परमात्मा को इन्वोक करते हैं और उनकी ताकत से फिर हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो अभी मेडिटेशन करेंगे।
Oh. सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
जैसे कि विषय है माय प्रोफेशनल रोल इन मैक्सिमाइजिंग कलेक्टिव परफॉर्मेंस, बहुत चुन करके डिस्कशन के लिए यह टॉपिक मिला है बिकॉज इट इज टॉकिंग ऑफ माय रोल इन कलेक्टिव परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारे सामने जो विराजमान है ये भ्राता जी सारे ही बहुत ही इन्होंने ऐसा पद प्राप्त किया है तो जरूर अच्छा परफॉर्मेंस एट पर्सनल लेवल किया है तो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो पैनलिस्ट सब एज पीपल एज अ सिंगल पर्सन बहुत सुंदर परफॉर्मेंस किया, लेकिन अभी इनके लिए टॉपिक है कि कलेक्टिव परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए How will I intervene or what role will I play or what role I have been playing? उसके ऊपर यह अपने विचार सुनाएंगे जो हम सबके लिए भी बहुत बहुत लाभदायी होंगे। वैसे आप सबका थैंक्स करती हूँ, जब हम आए थे सारे पैनलिस्ट बहुत ही कम भाई बहने थे तो मैंने मन में सोचा कोई बात नहीं, एक ऐसा सेशन हिस्ट्री में है जिसमें कि एक को ही सुनाया गया था ज्ञान। किसका सेशन था वो? हाँ जी, ना महाभारत में श्री कृष्ण जी ने एक को ही सुनाया, हम फिर भी हमारे सामने फिर भी वी हैव गुड ऑडियंस, आई थिंक पैनलिस्ट वी विल क्लैप फॉर देम। आपके लिए हमारे लिए आपने क्लैप किया तो आपके लिए भी हम क्लैप करते हैं, थैंक यू फॉर योर परफॉर्मेंस ऑलरेडी। एंड आई नो दैट यू हैव ऑल बीन वेकिंग अप अर्ली विच मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, जो यहाँ आप सुबह सुबह 4 बजे मेडिटेशन के लिए आ रहे हो एंड थ्रू आउट द डे देर इज देन योगा देन वन क्लास आफ्टर अनदर एंड सो डेफिनेटली बॉडी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। भोजन भी अच्छा है, भोजन तो इतना अच्छा भोजन खाने के बाद ऐसे 4 बजे ऐसी क्लास में पहुंचना सेशन में पहुंचना बाय इट्सेल्फ इज गुड परफॉर्मेंस, सो थैंक यू फॉर योर परफॉर्मेंस बिकॉज वी आर वेरी रेस्पॉन्सिबल सो वी डेफिनेटली हैव टू परफॉर्म, सो वी ऑल केम but you definitely are doing a very good performance and is karyakram ko hum aage badhayenge, my only request will be we will try to have because we have to finish by 4:25 we have an hour with us, so as many questions possible each panelist will be telling and we have the chairperson of टूडेज पैनल डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी। हाँ, सो वी विल फर्स्ट गिव बुकेज टू आर गेस्ट एंड बैडजेस। बहनों से निवेदन है तो पहले हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी इनको बुके बैच पहनाएं। मिस्टर गौरव दास जी इनको बुके दे रही है बहने। आदरणीय दिवाकर अग्रवाल जी, प्रमोद चौधरी जी, और आदरणीय राजयोगी भरत भूषण भाई जी। तो मंच को पहले यह एक प्रश्न लेते हैं कि आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली संस्था के साथ एक विजन होता है एंड उस विजन के प्रति आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड उस अनुसार आप कार्य भी करते हैं। माय क्वेश्चन इज कि जो विजन, जो एनर्जी, जो स्पिरिट आपके पास होती है, डाउन द ऑर्डर वही स्पिरिट कैरी होता है क्या, या फिर उसी स्पिरिट को रखने के लिए फिर आपको क्या क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं? यह प्रश्न पैनल को मैं रखती हूँ। अभी हमारे बीच पहुंचे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहनों से निवेदन है कि भ्राता सोनी जी को बुके से, बैच से स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी बहने, तो मैं जो है वह स्टार्ट करती हूँ। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि जो भी आप सारे यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी महान संस्थाओं से जुड़े हुए हैं एंड हर संस्था का एक विजन होता है एंड वो विजन आपके पास तो बहुत क्लियर है, इट इज टू योर हार्ट एंड आपके पास जो क्लैरिटी है, आपके पास जो स्पिरिट है, वही विजन डाउन द ऑर्डर आप कैसे प्रोत्साहित करते हो अपने एम्प्लॉयज की वह उसी प्रकार का विजन कैरी करे। तो पहले मैं निवेदन करूंगी गौरव दास जी से कि वह इस विषय में अपना अनुभव सुनाए एंड एक छोटा सा भाई साहब का इंट्रोडक्शन है कि ही इज द सी जी एम ONGC नजीरा एंड ही सर्वड इन ONGC फॉर द लास्ट 33 years, 33 and a half years टू बी प्रिसाइज, इन ड्रिलिंग ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्वड इन ऑनशोर ऑपरेशंस इन आसाम एंड ऑफशोर ऑपरेशंस इन वेस्टर्न ऑफशोर मुंबई ऑफ ONGC. Also served in supply chain management in Mumbai and New Delhi. तो ONGC से, नजीरा से आए हुए चीफ जनरल मैनेजर गौरव दास जी, आप थोड़ा अपना इस विषय पर अपने विचार सुनाए।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बहन जी। रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द डायस, ऑफ द डायस, रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ग्रेशियस लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। ये 7 दिन जो हमको यहां आने को एक मौका मिला, इसलिए मैं राजयोगी बीके पीयूष जी, बीके गिरिजा दी मैम बहन जी और हमारे दिल्ली लोधी रोड के पूरा टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके वजह से आज इतने उम्र में, मुझे आज लगता है कि मुझे यंगर टाइम में यहां आना चाहिए था, तो प्रोबेबली मैं और ज्यादा मेरा ऑर्गेनाइजेशन को साफ कर पाता, देश को साफ कर पाता। जो भी है, आज मुझे ये मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये महान संस्था जो है ONGC के साथ बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, फॉर सेवरल डिकेड्स, और हमारे कोई भी पर्यावरण दिवस हो, योगा दे हो, सब में हमारे पर्टिकुलरली पीयूष भाई जी और उनके टीम हमेशा हमारा दिल्ली ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हमको भी काफी उन लोगों से काफी हमको भी ज्ञान प्राप्त हुए हमारे कॉलिग्स को और ONGC भी कोशिश करता है ये महान संस्था के साथ जुड़े रहने के लिए और इनके जो महान जो काम है उसमें सपोर्ट देने के लिए कोशिश करता है थ्रू आर CSR इनिशिएटिव्स। आज हमारे MD & CEO ONGC विदेश के राजेश सिंह गुप्ता साहब को आना था लेकिन अर्जेंट कुछ बोर्ड मीटिंग के वजह से वो आ नहीं पाया, तो उनको सुनने से हमको और ज्यादा ज्ञान प्राप्त होते, हमको और ज्यादा चीजें ये होता। जो भी है, आज ये जो हमारा आज का टॉपिक है माय प्रोफेशनल रोल इन मैक्सिमाइजिंग कलेक्टिव परफॉर्मेंस। मैं जिस सेक्टर में काम करता हूं CPSU में अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर, मेरे साथ के साथी हैं ONGC से आए हुए हैं, वो मेरे साथ एग्री करेगा कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं, जो हमारे अपस्ट्रीम ऑयल इंडस्ट्री के ऑपरेशंस हैं, इसमें कोई भी काम हम अकेले कर नहीं सकते। मैं IIT ग्रेजुएट हूं, MIT ग्रेजुएट हूं, हार्वर्ड ग्रेजुएट हूं, लेकिन अकेले मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। हमारा हर एक ऑपरेशनल एक्टिविटी एक टीम एफर्ट है। आज AI के जमाने में भी हमारा फिजिकल वर्क प्रायोरिटी प्राइम है। पर्टिकुलरली मैं ड्रिलिंग से हूं। एक्चुअली मुझे एक स्लाइड दिखा सकते तो अच्छा होता, क्योंकि ड्रिलिंग रिग क्या होता है हमारे अपस्ट्रीम के लोग ही समझ पाएगा, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम 7,500 से 6,000 मीटर तक हमारा जो ये जमीन है उससे 7,500 से 6,000 मीटर तक और इवन इन ऑफशोर हमारा सी बेड से 7,500-5,000 मीटर तक हम ड्रिल करते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। और ये वेरी हार्ड वर्किंग फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता है। तो इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, हमको एक टीम, हमेशा एक टीम बिल्ड करके रखना, एक मोटिवेटेड टीम को कैरी करना। कोई भी पोजीशन में हो, कोई भी लीडरशिप छोटा हो बड़ा बोर्ड लेवल का पोजीशन में हो, हमारे अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के बाकी इंडस्ट्री में भी टीम चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट माई एक्सपर्टाइज इन अपस्ट्रीम, सो दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग टू अपस्ट्रीम इंडस्ट्री ओनली। तो इसमें ऐसा होता है कि हम एक टीम लेके ही हम अचीव कर पाएंगे। हमारा देश एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, तो हमारा ऑयल प्रोडक्शन गैस प्रोडक्शन हम जितना बढ़ाएंगे, हमारा ये आउटफ्लो हमारा जो है इंपोर्ट कम होगा। इसलिए एक टीम बिल्ड करना हमारा एक मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चीज में जस्ट एक छोटा सा मैं मेरा यंगर टाइम का एक इंसिडेंट बता के मैं कंप्लीट करूंगा। एक का मैं रिक पे काम करता था, रिक का सिर्फ ड्रिलर होता था, एक रिक पे ड्रिलिंग मेंटेनेंस केमिस्ट्री सबके लोग होते हैं और एक टीम लेके हमको काम करना होता है। तो आई वॉज द सिर्फ ड्रिलर। वन डे व्हाट हैपेंड, आई ट्राइड टू कैरी मेंटेन ए वेरी गुड रेपो विद रिलेशन विद ऑल एंड मोटिवेट एवरीबॉडी। उस टाइम में मुझे कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं था कि मुझे ये ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि ये लोग नहीं होगा तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बॉस मुझे बहुत सुनाएगा। वन फाइन मॉर्निंग व्हाट हैपेंड, हम जस्ट जाके सिर्फ टेक ओवर किया, पता चला स्ट्रिंग जो ड्रिल करते हैं ना, वो स्ट्रिंग जाता है एक, वो स्ट्रिंग इन ए क्रिटिकल पोजिशन स्टक होने वाला था और मेरा शिफ्ट में हम मिनिमम 5 लोग होते हैं, 3 लोग आए नहीं। तो मैं क्या करूं, I just completed 5 or 6 years in ONGC that time. I was a ship driller only. I salute to my team, that team of my rig, everyone from maintenance to maintenance department. They don't have to work in the our drilling floor. Everyone came, walked, and they saved the string. ये यहाँ बताने के लिए या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उस टाइम के लिए, उस दिन के लिए, आज तक मेरे लिए, मुझे लगता है मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. और कोई अप्रिशिएट करे नहीं करे, मैं खुद को अप्रिशिएट करता था कि ये
हम भी अप्रिशिएट करते हैं आपको.
थैंक यू सो मच. और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. और मैं आज से यही सोच रहा हूँ कि आगे वाले जो भी दिन रहेगा हमारा, हमेशा हम ये महान संस्था के साथ जुड़े रहेंगे. थैंक यू सो मच.
बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो यह प्रश्न जरूर एक रखूंगी कि वॉट इज इट इन यू दैट मेड एवरीबडी हेल्प यू, बट दैट वुड बी लेटर. आई विल कम बैक टू यू बिकॉज हमारे में कुछ है जिस कारण से फिर हमको मदद करते हैं. कभी कभी मदद भी नहीं करते, करने दो उसको. सो देर इज समथिंग इन यू, सो आप सोच के रखना. सो आई विल कम बैक. एंड अभी डॉक्टर सुभाष चंद्र सोनी जी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर गुजरात स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, गांधीनगर से विशेष पहुंचे हैं. तो कैन यू शेयर द विजन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ यू आर प्रमोटिंग इट डाउन द ऑर्डर?
ओम शांति. सबको ठीक से सुनाई दे रहा है ना? बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे अच्छा लगा. मैं बहुत सालों से भी जुड़ा हूं. संस्था का इतना बड़ा फैलाव होना, ये ऐसे ही नहीं होता है, कमिटमेंट होता है. लीडर का कमिटमेंट होता है, लीडर्स के फॉलोअर का कमिटमेंट होता है, और उनका जो उद्देश्य है, उनका जो कॉज ऑफ एक्शन है, वो पब्लिक सर्विस होता है, तब जाके लोगों में मान्यता मिलती है, लोग आते हैं और होता है. आज का जो टॉपिक है, माय प्रोफेशनल रोल इन मैक्सिमाइजिंग कलेक्टिंग परफॉर्मेंस. मेरा करीब 45 से 50 साल हुआ पब्लिक सर्विस में. अक्रॉस द गवर्नमेंट हर सेक्टर में काम किया है, इकोनॉमिक सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो. मैं 5 साल निजी सचिव रहा अमित शाह जी का, जो आज यूनियन होम मिनिस्टर है. इसी नाते हमें नरेंद्र मोदी अपना प्रिय, हम जो उस टाइम हमारा सीएम था, काफी मौका मिला इंटरेक्शन करने का. गांव से एक लड़का स्टेट कैपिटल में जाके वहां पे पहुंचा. एंड रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय ईगो, आई एम वेरी मच अवेयर, गॉड हैज गिवन इनफ. आई एम जस्ट शेयरिंग माय जर्नी, how it has come to the point and how I could be able to maximize the performance of the organization. हर क्षेत्र की बहुत सारी बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, टाइम कम है हमारे पास, बाकी स्पीकर है. पॉलिसी लेवल की बात करता हूं, प्रिंसिपल बताता हूं आपको कि क्या हुआ, क्या देखा, मैं कैसे कर पाया. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो स्टेक होल्डर होते हैं, एक तो इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल. इंटरनल में कौन आता है? जो लीडर से लेकर अपना उनका प्यून तक, पूरी टीम जो है ऑर्गेनाइजेशन की, जो फील्ड में काम करती है, हेडक्वार्टर में काम करती है, वो पूरी टीम इंटरनल स्टेक होल्डर है. जिनको आप प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस दे रहे हो, वो आपका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है. हमारा रोल है हाउ टू गिव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास एक कमिटेड सेटिस्फाइड टीम होनी चाहिए, ये प्री कंडीशन है. अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं प्री डिटरमाइंड नहीं हूं, मेरा गोल क्लैरिटी नहीं है, मेरा रोल क्लैरिटी नहीं है, तो आगे जाके वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, मे बी इट्स कॉमर्शियल, गवर्नमेंट और स्पिरिचुअल, उनका हेड में गोल क्लैरिटी इज इनएविटेबल थिंग। दूसरी बात है अपने स्टेक होल्डर जो इंटरनल जिसको लेकर, जिस टीम को लेकर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस का परफॉर्मेंस बढ़ाने जा रहे हो, उनका प्रॉब्लम क्या है वो देखो आप। तो मैंने सबसे पहले, मैं जहां जाता हूं उनको मोटिवेट करता हूं। और ये मोटिवेशन कहां से आया, मेरे लाइफ में जो स्पिरिचुअल लर्निंग हुआ, मैं ब्रह्मा कुमारी, गायत्री और आर्ट ऑफ लिविंग ऐसे कई संस्थाओं में गया हूं, और एस्पेशियली मैं श्री श्री रविशंकर जी से 30 साल से जुड़ा हूं। 1997 से आई एम अ डिवोटी, आई एम अ फॉलोअर ऑफ द श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। तब तक, उस टाइम तक मैं अपने लाइफ को देखूं तो क्लैरिटी नहीं था अबाउट द सेल्फ। आई एम टॉकिंग अबाउट दी हाउ आई कुड इंक्रीज द कलेक्टिव परफॉर्मेंस, आई डू नॉट हैव क्लैरिटी। वो क्लैरिटी मेरे हिसाब से तभी आती है जब आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो। आप कौन हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग यू हियर, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, ये क्लैरिटी होगी तो सब ठीक हो जाता है। तो मैंने जो पाया वो मैंने शेयर किया। अब लोगों को जो प्रॉब्लम होती है ना, किसी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, किसी को फियर है, किसी को पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब सो मैनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, रोल रिलेटेड स्ट्रेस, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रोल स्ट्रेस। डॉक्टर उदय परीख ने IIM अहमदाबाद में उसके बारे में बहुत काम किया है। दूसरा फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन को किल करता है, वो इंटरनल स्टेक होल्डर का बर्नआउट किल करता है। डॉक्टर मास्लाक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो मैंने पूछा, मैंने देखा, मैंने समझाया कि हम पूरी जिंदगी जैसे आंख खुलती है तो सोना तक और कभी कभी सोने में भी, ड्रीम्स में भी बाहर की चीजों को, बाहर के लोगों के बारे में सोचते हैं। तो हमारा जो ये इंटरेक्शन होता है बाहर की दुनिया का, उनका ग्रुप बनाया मैंने, बताओ कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या, सबने बताया। इसके बाद हमने ग्रुप किया। ग्रुप में क्या है, बाहर की पूरी दुनिया में सिर्फ तीन चीज है। आज सुबह शिवानी दीदी को मैं सुन रहा था, वो करीब करीब उसी के तरफ इशारा कर रही थी। बाहर की दुनिया में तीन चीज है, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। आज हम जहां पर है ये परिस्थिति है, आपको ये बोलना है, ये मेरा रोल है, सिचुएशन। ऐसा ही माइक है जैसा मैं चाहता था, कॉलर माइक नहीं है, तो इससे मेरे को काम चलाना पड़ेगा। अब मुझे इंटरेक्शन चल रहा है, मुझे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, परिस्थिति, बहुत गर्मी है, आना है टाइम पे, गाड़ी में पंक्चर हो गया, सिचुएशन हो गई, माइक ठीक नहीं है, चेयर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मेरी ठीक पोशाक ठीक नहीं है, तो ये थिंग्स हो गई, वस्तुएं हो गई। और तीसरा मुझे जो परेशान करता है, जिनको मुझे इंटरेक्शन करना है, वो ग्रुप है, पर्सन, व्यक्ति। तो दुनिया में हम जिनके साथ इंटरेक्शन करते हैं वो तीन ग्रुप में आते हैं, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। वो तीनों हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं, वो हमारे में फियर डालते हैं, वो हमारे डिमांड करते हैं, वो हमारा ईगो को ट्रिगर करता है, वो हमारा माइंड को डिस्टर्ब करता है। अब इसके कैसे बचे, तो इसीलिए बचना है, वहां स्पिरिचुअलिटी का रोल आता है। तो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे क्या सिखाया, स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया कि ये तीन तरह की चीजें हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, लेकिन ये तुम दिखो, जागो, अंदर क्या क्या पड़ा है, ईश्वर ने, बाबा ने, महादेव ने, सुपर कॉन्शियस ने आपको क्या दिया है। तब मैंने पाया, मैंने समझा, वो मैंने समझाया क्या है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 7 लेवल्स। फर्स्ट लेवल है बॉडी, मैं एफिशिएंटली अपना रोल कर सकता हूं क्योंकि मेरा शरीर ठीक है। अब शरीर के बारे में हम अपने आप को कितना टाइम देते हैं, नहीं देते हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू बी ए गुड टीम मेंबर, गुड एम्प्लॉई, गुड लीडर, देन यू विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला लेवल है अपना, वो है बॉडी। बॉडी को आप ठीक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, एरोबिक्स करिए, जो भी करना है। यहां पतंजलि का भी आता है, सबसे पहले आसन, शरीर को ठीक करो, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इन अ साउंड माइंड। तमस रजस सत्व कहां से जाता है? ज्यादातर तो आहार से आते हैं।
सोनी जी, इफ यू कैन बी अ बिट, इफ यू कैन कंसाइज,
थोड़ा सा सेकंड लेवल में इमीडिएटली आई विल,
क्योंकि सेवन लेवल्स आप अभी समझाएंगे तो मुश्किल होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आई विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स। सेकंड लेवल है अपना ब्रेथ। लाइफ की शुरुआत होती है ब्रेथ से, लाइफ का एंड होगा ब्रेथ से। उस दो ब्रेथ के बीच में जो भी है जीवन, वो है लाइफ। उनको आप गेम से ले लो, आराम से हल्के हल्के स्ट्रेसलेस काम करो। थर्ड लेवल आपका है, वो है अपना माइंड। अब डिस्टर्ब माइंड होगा तो कभी भी आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते अपने परफॉर्मेंस को, ना वो दिशा दे पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट रोल है माइंड का। सुबह दीदी बात कर रही थी, वो है चौथा स्तर अपना लेवल, वो है इंटेलेक्ट। जब आपका माइंड सेटल नहीं है तो आपका इंटेलेक्ट ठीक काम नहीं करेगा। यू शुड हैव ए प्योरिटी ऑन योर इंटेलेक्ट। पांचवा माइंड है, पांचवा फिफ्थ लेवल है, वो है हमारा मेमोरी। भाई अपने एम्प्लॉई से मैं जजमेंट बना लेते हैं, लीडर वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, नहीं। हर मोमेंट में असीम संभावनाएं हैं बदलाव की, वो तो देखो। इसीलिए मैं किसी को जजमेंट नहीं बनाता, उसको समझ के उसके रोल में डिफरेंट चेंज करता रहता हूं। तो मेमोरी, डू नॉट मूव बाय योर मेमोरी, बाय योर जजमेंट्स। छठा बहुत पावरफुल लेयर है अपना एग्जिस्टेंस का, वो है ईगो। अब ईगो ड्रिवन लीडर कभी भी मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, तो ईगो ड्रिवन बत बनाइए। कंपेशन, करुणा, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, नीड आइडेंटिफिकेशन, कामनेस, विद रिमूविंग द फियर, गिविंग द क्लैरिटी ऑफ द गोल, गिविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप जब करोगे तो ईगो आपका शांत होगा। तो ईगो नहीं होना चाहिए लीडर में। ईगो ड्रिवन एनवायरमेंट से आपको सर्विस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा। ये जब करोगे तब आपका जो कनेक्शन होगा आत्मा, ये तीन चीजों का इंटरेक्शन आप इस छह लेवल से समझोगे तब आप सोल कॉन्शियस में जा पाओगे। जो ब्रह्मा कुमारी भाई वही टीच करती है, करीब करीब हर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वही टीच। सोल कॉन्शियस से जितना आप ऑर्गेनाइजेशन को लीड करोगे, दिशा दोगे, उसको एक कॉन्फिडेंस दोगे, उसको एक मजबूती प्रदान करोगे, उसको खड़े रहोगे आप उनकी मुश्किलियों में, तब देखो पूरी टीम आपके साथ आत्मीयता से जुड़ जाएगी। वो आत्मीय कनेक्शन जो करता है ना लीडर के लिए, वो खड़ा रहता है, वो क्लैरिटी होती है, उसमें हैप्पीनेस होता है, उसमें एक सेलिब्रेशन का एक एनवायरमेंट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, और तब जाके यू कैन मैक्सिमाइज दी परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू दीदी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।
थैंक यू सोनी जी। क्या है, ही हैज अ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग स्पिरिचुअल बेस, एंड वो जो एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करना चाहते थे, सो मे बी टाइम वॉज इनफ, but there is lot, anyway we'll see how things can be. Right, and abhi hamare beech Divakar Agarwal ji hai, thoda sa inke bare mein. And Divakar Agarwal ji, former additional director general CPWD, he did his engineering graduation from BITS Pilani in 1986 and qualified for engineering services in 1988. He successfully completed border roads and fencing on Bangladesh border near Siliguri in record time. Abhi to ye bahut zyada news mein chal raha hai. Provided relief to traffic and pedestrian by designing and implementation of 10 flyover projects in Delhi, and completed many educational buildings projects in universities in Kerala and Karnataka. Lead quality assurance team in CPWD headquarters. So, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन में भाई साहब का रहा है. आपको हमारे बिल्डिंग्स को देख करके क्या लगता है? ब्रह्मा कुमारीज के बिल्डिंग्स और ब्रह्मा कुमारीज के जो स्थान है जहां आप रुके हुए हो, आपका डाइनिंग हॉल है, ये सारा भी देखकर आपको क्या लग रहा है वो भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं. एंड माई क्वेश्चन वॉज एक्चुअली आपका जो विजन, यस प्लीज आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए.
ओम शांति. दिव्य आत्माओं, सबसे पहले मैं पीयूष भाई जी और गिरिजा दीदी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके माध्यम से मैं यहां आपके सामने उपस्थित हूं. वो लगातार CPWD में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मोटिवेशनल वर्कशॉप करते रहते हैं। दीदी ने सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमारी टीम के सब लोग उस विजन को शेयर करते हैं जो लीडर का या ऑर्गेनाइजेशन का होता है। असली बात यही है कि क्या वो शेयर होता है या नहीं होता है और कैसे वो शेयर हो। तो इस बारे में मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तो उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। जब करीब 10 साल पहले मैं चीफ इंजीनियर था तो हमें कोई 50 स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन करना था, नए स्कूल्स का, और वो 1.5 साल में पूरे करने थे। ये गवर्नमेंट का मैंडेट हमें मिला। हमारा मैंडेट है कि स्कूल बहुत अच्छे होने चाहिए, उनमें कोई क्वालिटी वाइज भी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए और करना भी रिकॉर्ड टाइम में है और टीम भी बहुत बड़ी होती है। और अगर 50 स्कूल है तो 50 कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और 50 कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनके मैनेजर्स, उनके बाकी स्टाफ, बहुत बड़ी टीम रहती है और हमारे इंजीनियर्स भी रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने, मेरी युगल है दीपिका अग्रवाल, उनके प्रेरणा से मैंने ब्रह्म कुमारीज में ज्ञान प्राप्त किया था। तो मैं उन दिनों रेगुलरली मेडिटेशन कर रहा था। तो एक दिन मेडिटेशन करते करते मेरे को कुछ विजन आया कि क्योंकि जो काम हम कर रहे होते हैं, जो समस्याएं हमारे सामने होती हैं मेडिटेशन के टाइम में, वो आती हैं उभर के हमारे दिमाग में, वो प्रश्न खड़े होते हैं और परमात्मा उनके जवाब भी देता है। तो कुछ मेरे को स्ट्राइक किया मेडिटेशन करते करते, फिर मैंने सभी जो लोग थे, टीम वाले थे, जो दीदी का प्रश्न है कि उस विजन को कैसे हम उनको कैसे अपने लेवल पे लेके आए, तो उनसे मैंने शेयर किया अपना विजन। मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये जो गवर्नमेंट स्कूल हम बनाने जा रहे हैं, इसमें शहर के सबसे गरीब बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे और ये परमात्मा ने, शायद लाइफ में मतलब एक ही मौका हो, ये परमात्मा ने हमें मौका दिया है कि हम वी कैन मेक ए चेंज इन देयर लाइव्स थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज स्कूल्स। तो हम क्यों ना ऐसे स्कूल्स बनाएं जिन स्कूलों में, जिन क्लासरूम्स में बच्चों का पढ़ने का मन करे और टीचर्स का पढ़ाने का मन करे। तो जब मैंने ये विजन लोगों से बार बार लगातार कॉन्ट्रैक्टर्स के स्टाफ से, एम्प्लॉयज से, सबसे शेयर किया, तो एक्चुअल में चेंज वॉज देयर, बिग चेंज वॉज देयर। कॉन्ट्रैक्टर्स अपना प्रॉफिट भूल के और उस काम में जी जान से लग गए, क्योंकि सबके अंदर समाज के प्रति कुछ ना कुछ करने की इच्छा अवश्य होती है। तो इस तरीके से हम एज ए लीडर वी कैन चेंज द विजन ऑफ अवर टीम। थैंक यू।
बहुत अच्छा। और यू नो जनरली गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन मतलब हमको थोड़ा सा अलग रहता है थॉट, लेकिन आपने हमको यहाँ पर जो है ना, नहीं इज इट नॉट सो, कितना जो है वो बताया कि कैसे कैसे हम अच्छा सा विजन रखते हैं एंड यू नो हाउ इट गेट्स कैरीड, यदि वो शेयर करो तो सामने वाले भी कैसे मोटिवेट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। और अभी अगले हमारे पैनलिस्ट प्रमोद चौधरी जी, थोड़ा सा उनका भी मैं इंट्रोडक्शन पढ़ देती हूँ। भ्राता प्रमोद कुमार चौधरी इज अ वेटरन इंडियन रेलवे सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड करंट CVO एट TCIL एंड एन एसोसिएट ऑफ द BK लोधी रोड। ब्रह्मा कुमारी इसके साथ एसोसिएटेड है with 28 plus years in public administration and anti-corruption strategy, he turns integrity into an collective performance resources. Collective performance. परफॉर्मेंस ही है. अच्छा, इट्स रिटन रॉन्ग दे देन. ओके. एन IIT कानपुर इंजीनियर, नाउ अ डॉक्टरल रिसर्चर एट IIT BHU. ही शोज हाउ पर्सन एनवायरमेंट फिटनेस एंड वेल बीइंग एट पर्सनल लेवल आर स्ट्रक्चरल चैनल्स फॉर कलेक्टिव परफॉर्मेंस. ही ब्रिंग्स बोथ विजिलेंस एंड विजन, डिजाइनिंग सिस्टम्स वेयर पीपल एंड पर्पस परफॉर्म टूगेदर. बहुत अच्छा, थैंक यू. एंड प्लीज प्रमोद चौधरी जी, प्लीज शेयर ऑन दिस टॉपिक ऑफ हाउ टू टेक द विजन टू द पीपल.
थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई ऑन विजन. Dr. Subhas has already discussed about the external and internal stakeholders. So what happens that many a times you get to apply your vision and mission when that particular department or organization is not performing well, because you can see the perceivable change there. Otherwise, if some organizations are doing well, you will not be able to appreciate your own contribution. So, I was posted as a vigilance officer for corruption prevention in Diesel Locomotive Works, Varanasi. And there I saw that many of the cases were pending. Nobody was interested to do anything. And everybody was fearful that if I will touch the file, I will get punishment. Because once again, I will have to go back to the same cadre. So the fear was the greatest common denominator across all my team member. So the vision and mission of the organization ultimately has to be communicated by the leader of the team. So, as a team member, leader of the team, first of all, if I do not repose confidence within myself that I can protect myself, then how can I tell other people that I will be able to protect you? So, earlier what was happening that all the, in the government sector, you sign the letter, you approve the, format of the letter, and down below the people will sign it. So first change I did was that I will sign my letter. You don't take the responsibility, and if somebody tells you that why you have done, you ask that ki, I have done it. So first and foremost thing is that I will have to, as a leader, I align my own goal and own purpose with that particular small team. So then I asked many of the people that what do you want in the life? So I surveyed around 1,157 people. So around 80% of the people had no vision. Why they exist, they don't know. So then I dig down, and around 20% that money, that I altruistic motive within the family, though ki sab family ko member ko karna, very few people told that happiness is their goal. So then when I asked that this team is telling that happiness is the goal, do you agree? Then everybody said that yes. Then my quest for searching for the happiness started, and then I joined IIT BHU as a research scholar ki how happiness transforms the performance. And then after searching many of the positive psychology and the organizational psychology book, I applied PERMA principle. This is the positive emotion, engagement, relationship, meaningfulness, and sense of accomplishment as the five pillars of the happiness that we can apply at the work. So this positive emotion, engagement, and relationship at team level, it's very difficult to infuse. Because salary is fixed in the government sector, you cannot motivate them. Engagement, role, and other things are defined, you cannot do anything. Relationship with the team, hardly there is any scope to define. So only, I also agree with that, Mr. Diwakar Agrawal, that only this is a hedonic pleasure or something. So in the research, I found that meaningfulness and sense of accomplishment, these are the untrust things that we can tap here. So I attributed all those principle that meaningfulness, how to communicate that this work is meaningful. So then everybody was giving the award that, okay, you have saved 10 lakhs, 10 crore or like that. What I asked them, you visualize that what you are going to do. So I asked that if you will save around 11 crore rupees, you are giving Indian Railways and nation one locomotive free of cost. Okay? So that way, the branding has to be done, because not many people are well in visualization process. So for your team, you will have to visualize and then you will have to communicate to them. So that I did, and many of the long standing cases were sorted out, and many high profile cases I had investigated. So then what happened, that second thing I told, that never have ego that what you are doing, that you have done, you have given one locomotive, it should not be translated into ego. And your enemy is not a person. We are all creator of Paramatma. This I communicated. You cannot hate people and at the same time you expect that they will bestow love for you. So you hate that particular activity and action within the your role. So they analyzed within the role and give full respect, even if some corruption charges have been leveled. As a person, they are not bad. As an activity, you can say that is good or bad. So that also transformed that people, that those people who were quite aggressive during the previous period, they become docile. Full respect, sir, have a cup of tea and other things. So that way, what happens that the courage and conviction ought to have humility. Then only it can traverse far away, and even you can make your enemy a friend, and still they will not have the punch. Even if you have done some harm, you cannot, you can protect yourself, because you are not generating any revengeful action or activity from them. So this way, this was my journey at this location. And one small activity at the TCIL, I started saving the wasteful energy there, switching off the light and other things. And that whenever I used to go there, I will switch off if people are not there. So there what happens, that then there is a change was there, perceived by other people, and they started following. And this change again transformed into my teamwork for high profile investigation. So even unrelated work, if you motivate through meaningfulness and sense of accomplishment, even unrelated motivation can translate it into those unrelated area. So that's all how
thank
I translate.
You, thank you. Thank you very much. भाई साहब सुना रहे थे तो मुझे गांधी जी का एक स्टेटमेंट याद आया. गांधी जी कहते थे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं. सो उससे ही फिर वो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो सकता है. वो भी ही विल ऑल्सो बिकम पार्टिसिपेट इन वॉट एवर जॉब इज देयर एंड ही विल ऑल्सो बिकम अ रिसोर्स पर्सन. बहुत बहुत थैंक्स. और आप खुद पीएचडी इस विषय में करना बहुत अच्छी बात है. और अभी हमने जैसे हम कहते हैं एक लौकिक दुनिया के हमारे वरिष्ठ भ्राताओं से सुना इस विषय को लेकर के, तो अभी इस आध्यात्मिक जगत के हमारे भ्राता जी भरत भूषण भाई जी, इनके बारे में मैं बताऊं तो ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर है पानीपत में, तो इसके वे डायरेक्टर हैं. और पानीपत सब जोन ब्रह्मा कुमारी इसका, इसके पास इनके अंडर 60 सेंटर्स और 600 गीता पाठशालाएं एंड 150 सिस्टर्स, और ये सारे मिलकर के ईश्वरीय सेवाएं करते हैं। भाई साहब सबको मोटिवेट करते रहते हैं और खुद ही साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर के प्रेसिडेंट भी है और लगभग 50 देशों में इनका बुलाया गया था गया है मोटिवेशनल स्पीकर के लेवल पर। और आपको जो पहले दिन थे इस प्रोग्राम के रिसेप्शन सेशन में थे, भाई साहब की स्टोरी याद है? देखिए अभी भी स्टोरी याद है और वो स्लोगन याद है? देखिए स्लोगन भी आपका याद है।
गुड,
तो अच्छे स्टूडेंट्स है,
बिल्कुल
गुड लिसनर्स, थैंक यू। अच्छा, तो भाई साहब विजन क्या है और फिर वो कैसे कैरी कराते हैं, क्योंकि वी आर एन एनजीओ प्लीज, एंड हमारे पास बहुत वैरायटी रहती है लोगों की, सो कैसे यू नो ही टेक्स एवरीबॉडी टुगेदर, सो आपसे जानेंगे।
थैंक यू अंजलि बहन जी, सबके अनुभव सुन के बहुत खुशी हुई, खासकर हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने 50 स्कूल और कैसे 50 कॉन्ट्रैक्टर सबको मोटिवेट करके किस तरह विजन को प्रैक्टिकल किया। तो टॉपिक के अनुसार मैं विचार कर रहा था, कोविड का पीरियड था, क्योंकि एक्सपीरियंस सेशन ही है एक तरह से, कोविड का पीरियड था, लॉकडाउन, और मेरे जैसा भाई जो महीने में 25 दिन कहीं ना कहीं लेक्चर मोटिवेशनल स्पीचेज क्लासेज कहीं ना कहीं घूमने का पार्ट जो है बाबा ने बहुत दिया है, इनवाइट भी करते रहते हैं इंडिया भी और कहीं भी, तो अब लॉकडाउन बंद, तो अब आप सोचो, तो मैं वहां तपस्या धाम जैसे नीचे शांति वन में है वैसा ही एग्जैक्ट बना हुआ है, 5 एकड़ लैंड में हमारा रिट्रीट सेंटर है, तो बाबा के पास बैठा तो बाबा ने कहा बच्चे कुछ ऐसा करो जो सारी दुनिया में किसी ने न किया हो। तो बाबा ने टच किया एक बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट, वो क्या, 16 क्लास संपूर्ण बनने के लिए 16 सप्ताह और 16 घंटे की योग भट्टी, क्योंकि हमारे यहां पर मेडिटेशन एक ऐसी चीज मानी जाती है सब समस्याओं का समाधान। तो मैंने ये बहुत सुंदर लगा, ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा, मुझे वैसे भी मेडिटेशन का बहुत शौक है और हमारे सब भाई बहन भी 2-3 घंटा तो रोज बैठते ही हैं, मॉर्निंग 3:30 से 5 बैठ जाएंगे, नुमा शाम करेंगे 6:30 से 7:30, मुरली से पहले बैठेंगे या गुड नाइट मेडिटेशन करेंगे। लेकिन अब ये 16 घंटे का मेरे को शौक था, मैं कहा ऐसा कुछ किया जाए जो वंडरफुल, मेरा स्टेमिना भी था और शौक भी था, तो मैंने संकल्प किया। फिर पहले मैंने सोचा मैं खुद संकल्प किया तो प्रैक्टिकल करता हूं, तो मैंने प्रैक्टिकल किया तपस्या धाम में, बड़ा आनंद आया, हर घंटे का मैं प्लान बना के बड़ा पावरफुल शक्तिशाली अनुभूतियों में मैं उड़ता रहा, बहुत सुंदर रहा। फिर मैंने अपने निवासियों के बीच में शेयर किया, मैं कह ऐसे खाली टाइम, तो कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर, इसलिए सब इस कार्य में लगे हम, एक ये कार्य करना है 16 कला संपन्न बनने के लिए और 16 सप्ताह 16 घंटे की भट्टी। तो उनमें से 20 में से 8-10 तैयार हुए, उनको ऑप्शनल छोड़ दिया, चाहे कोई 4 घंटा करे चाहे कोई 8 घंटा करे, अच्छा 12 घंटा करे या 16 करे, पर करना जरूर है, मिनिमम 4 का रखा। तो उनमें से 10 सभी जुड़ गए, भाई चलो 4 तो करेंगे लेकिन कोई कोई 8 भी जुड़े। मैंने खुद 16 घंटा प्रैक्टिकल किया, मतलब 16 सप्ताह 16 घंटा योग भट्टी, और मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी के सबसे सुंदर दिन वो 16 सप्ताह थे। फिर इतना ही नहीं, बाबा ने दूसरे तीसरी बार टच किया कि बच्चे और आगे फैलाओ इस गुण को, फिर हमने अपने पानीपत सब जोन में टीचर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें डाला, फिर बहनें कहीं जुड़ गई, फिर कहीं भाई जुड़ गए, उसके बाद फिर हमने एक यूट्यूब पे वीडियो निकाला इस पे 16 सप्ताह 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 घंटे की बट्टी, तो वो बहुत लोग 80,000 लोगों ने देखा। फिर मेरे को, मैं अपना नंबर दिया था, मुझे मैसेज भेजना जो जो ज्वाइन करें, आप विश्वास करेंगे कि कम से कम सारे इंडिया देश से विदेश से कम 5,000 भाई बहने उसमें एवरी सैटरडे जो है 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 घंटे की भर्ती। तो इस तरीके से एक तो ये था जो डाउनलोड विजन किया, ऐसे तो अनेक हैं लेकिन मैं कुछ कुछ चुनिंदा आपको सुना रहा हूं। ये तो रहा ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर GRC जिसे कहते हैं। अब अपनी विंग में भी बींग द नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहन भाई साहब के साथ जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो राष्ट्रपति को मिलना था 2 फेब को, भाई मिलना है तो क्या करें भाई, ऐसे पूरा ग्रुप विंग जाएगा 37 राष्ट्रपति भवन में इनवाइटेड है, तो कुछ प्रपोजल लेके जाएं लॉन्चिंग भाई चलो। हमने बुलाना भी था पानीपत में, हमने कहा लॉन्चिंग के लिए कहते हैं क्या किया जाए भाई, इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन, और एक कैंपेन के लिए तो आएगा नहीं भाई, सारे राष्ट्र में हम 100 सिटीज कवर करेंगे और 100 शहरों में ये जाएगा और उसके 6 रूट हमने बना लिए, ये हम प्रपोजल बना के राष्ट्रपति मैडम को देंगे और इसका लॉन्चिंग जो है पानीपत में करना है। तो जी हम सब गए, वो मिले, मैडम मिली और उनको निमंत्रण भी दिया और खैर उनके साथ ग्रुप फोटो हुआ। उन्होंने कहा विचार करूंगी, खैर वो तो नहीं आ पाए, परंतु विजन जो बन गया, अब विजन बन गया तो हमने सोचा अब इसे प्रैक्टिकल, उन्होंने शुभकामनाएं दी अपने, लेकिन हमने सोचा इसे प्रैक्टिकल करना है, कुछ भी हो जाए। तो पानीपत का लॉन्चिंग पहले पानीपत का होना था, तो 19 अप्रैल से वो 3 मई था, तो फिर सब में पूरे विंग में उत्साह, भाई सब ने भी भरा, मोहन सिंगल जी हम भी, हमने कहा हमने प्रैक्टिकल करना है। तो देखो एक उनके मिलने से, प्रपोजल देने से, खाली मन में विजन बनाने से, तो अभी पानीपत से जम्मू हम करके आए, आई वॉज द ग्रुप लीडर इन दैट कैंपेन, तो लगभग 20 शहरों में, हर शहर में हमारे 10 सभी थे, पीयूष अस्मिता बहन जो है सारी फैकल्टीज, तो 10 जगह जो है, और इतने एक एट अ टाइम पूरे शहर में इतने जोरदार 8-10 प्रोग्राम होते थे, और बीके भाई बहनों का क्लास होता था, सारे पेपर्स में आ जाता था, तो इतनी सेवा हुई उसमें 20 शहरों में, मैं समझता हूँ 150-200 प्रोग्राम हुए, जाके जम्मू वो समापन हुआ। सेकेंड अब कल लॉन्चिंग हो रहा है, तो मैं कल परसों पूरा कैंपेन का बस तैयार करके, अभी आप देखेंगे 5:30 बजे आ जाएगी, तो वो भी अब 24 से यहाँ से चलेगा अबू राज से नागपुर, वो भी 20 शहर हैं, 12 जून कवर होगा। तो एक विजन बनाया, फिर उमंग उत्साह भरा सब फैकल्टीज में, भाई साहब ने मेरे को कहा आपको तो सभी उसमें रहना है, क्योंकि जहां प्रोग्राम होते हैं थोड़ा सा वो होते हैं, तो मतलब मैंने देखा है इसमें सबसे बड़ा काम करता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और उमंग उत्साह। एक इसके लिए किसी शायर ने कहा, हिम्मत करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता, है चीज कौन सी वह जिसे पा नहीं सकता। तो अगर हिम्मत हो ना तो सब कुछ हो जाता है। इसी तरीके समझो, एक बार मेगा प्रोग्राम था, दादी जी ने उमंग दिलाया था, बड़े बड़े जॉन हेड्स मेगा प्रोग्राम करो, 1 लाख का 1 लाख का, दादी प्रकाश मणि जी, तो सब जॉन के अंडर तो 500 सेंटर होते हैं। मुझे दादी जानकी ने कहा तुम भी पानीपत में मेगा प्रोग्राम। अब ये सब जोन है, सब जोन के अंडर थोड़े सेंटर होते हैं, 50 सेंटर, 1 लाख का गैदरिंग करना कोई आसान काम नहीं, आपको पता है 2000 का भी करना बड़ी मेहनत वाला काम है। मैं दादी जानकी को कहा, मैं दादी जी आप आएंगे तो मैं जरूर करूंगा। दादी ने कहा कि नहीं, उस टाइम पे 13 फरवरी 2005 था, यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे छुट्टी नहीं दे रहे ब्रिजमन भाई और सब निर्भय भाई, फिर कैसे भी करके उन्होंने छुट्टी ले लिया कि 1 लाख आत्माएं आएंगी। तो मेरे को फोन किया, भारत भूषण मेरे को छुट्टी मिल गई है, मैं आ रही हूं। तो बस मैं तो एकदम जंप किया 2.5 फुट, और 1.5 महीना रह गया था। अब 1.5 महीने में आप सोचो 1 लाख आत्माएं मर्च वो करो, आप सोचो 1 लाख इकट्ठे करना। पानीपत तो एक छोटा शहर है, दिल्ली की तरह तो नहीं है, बॉम्बे दिल्ली में हुए थे मेगा प्रोग्राम। तो अल्टीमेटली हमने खूब उमंग उत्साह सब में भर के मीटिंग रखा, ब्रिजमन भाई साहब को मीटिंग में बुलाया, अमित चंद जी बुलाया, पूरा जोर लगा के, और डेली कहा आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने 1 लाख का कोई ग्राउंड बुक किया कि 1 लाख आत्माएं उस ग्राउंड में डेली विजुलाइज करो, और मेडिटेशन में उनको खूब जैसे शक्तियां दे रहे हैं, और स्टेज से दादी जानकी और सब 6 दादियां उस वक्त हमारे उसमें प्रोग्राम में आई थी, तो वो जो है ऐसा प्रैक्टिकल करो। तो सबने प्रैक्टिकल किया, और कैन यू बिलीव, अच्छी तरह पूरा एडी से चोटी का मेहनत किया,
जो कहते हैं ना कैनन इन द लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन राइट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, कैनन इन बैक ऑफ देम, लिटिल ब्रिगेडियर की पॉइंट पड़ी होगी कैसे उसने विजय प्राप्त की। तो 100,000 आत्माएं उस दिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में थी। हमने सारा पानीपत जिला ऐसे भर दिया था, कहीं भी नजर उठाएं तो होर्डिंग नजर आता था कि मुर्दे भी खड़े हो जाएं कि क्या हो रहा है, और मजबूर हो जाएं भाई जाना जरूर है, इतना पब्लिसिटी किया था। तो सचमुच हमारा विजन प्रैक्टिकल हुआ। थैंक यू वेरी मच, ओम शांत।
बहुत बहुत धन्यवाद। और समय को देखते हुए भी अभी आज के हमारे चेयरपर्सन भ्राता डॉक्टर प्रतीप मिड्ढा जी ने सबका भी उन्होंने सुना और खुद का भी जो अनुभव है वो सुनाएंगे। उसके पहले छोटी सी बात, क्योंकि मैक्सिमाइजिंग कलेक्टिव परफॉर्मेंस की है, और भ्राता जी अभी आप प्रकाशमणि दादी जी को याद कर रहे थे, तो ये जो ज्ञान सरोवर परिसर में आप बैठे हो ना, तो ये प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारीज का कैसे जो है वो हुआ है पता है? हम इसको कहते हैं 1 रुपी प्रोजेक्ट, 1 रुपी प्रोजेक्ट, क्योंकि उस समय चन्ना रेड्डी जी थे, तो गवर्नर थे राजस्थान के, तो उन्होंने पूछा कैसे करोगे आप, आपके पास क्या बैंक बैलेंस है? तो दादी ने जो है उनको सुनाया कि उस समय की जो बात है, उस समय अराउंड 3 लाख जो है बीके, रेगुलर बीकेस थे, और दादी जी ने कहा मैं कहूंगी कि शिव बाबा के इस प्रोजेक्ट में हर एक को हर दिन 1 रुपया डालना है। तो एक दिन का कलेक्शन कितना? 3 लाख। तो ऐसे जो है यह प्रोजेक्ट, और कोई एक कम से कम तो एक डालेगा, कोई 5 रुपये भी तो डालेगा, और इतनी सुंदर चीज बननी है। तो हमारी दादी जी ने ऐसे विजन देकर के सबको फिर यह प्रोजेक्ट बनाया। सो दिस इज बिकॉज ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस, कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज अंडर द गाइडेंस ऑफ दादी प्रकाशमणि जी, एंड भगवान की तो है ही है आशीर्वाद, जिस कारण से सब कुछ होता है। और जो भी बात कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि बस जब लीडर स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस हाई होती ही है। और हमारे बीच अभी आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, आप गए हैं हॉस्पिटल देखा? हाँ देखा है, अच्छा लगा। विशेषता ये है उसमें एक हॉस्पिटल की एक स्मेल रहती, देखिए वो स्मेल ही नहीं है, नहीं तो हॉस्पिटल जाओ तो एक अलग प्रकार की स्मेल रहती है, वो स्मेल आपको वहां पर नहीं मिलेगी। अच्छा ओके, यस बहुत अच्छा, इनको सर्विस भी मिली वहां पर। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल विंग, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज, और भाई साहब 35 ईयर से यह हॉस्पिटल जो है वह चला रहे हैं, जिस हॉस्पिटल के द्वारा बहुत सारी कम्युनिटी सर्विसेज होती है। सिरोही एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा बैकवर्ड है व्हेन यू टॉक ऑफ राजस्थान, तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल दैट थोड़ी सी कम है, और ब्रह्मा कुमारीज के इस हॉस्पिटल ने बहुत सेवाएं की है। तो आई थिंक भाई साहब विल बी यू नो शेयरिंग लाइट ऑन दैट। एंड हमारे पास इस हॉस्पिटल के द्वारा आईज केयर सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, नर्सिंग कॉलेज, मोबाइल क्लिनिक भी चलती है, एक ओल्ड एज होम भी है, एंड सबसे बड़ी बात अभी नीचे एक बहुत सुंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी आने वाला है जो सबकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा थोड़े समय में। तो ऐसे डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी अपना अनुभव कैसे कलेक्टिव परफॉर्मेंस करा रहे हैं हॉस्पिटल के द्वारा वह सुनाएंगे।
ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी की बात हो रही थी तो मैं याद कर रहा था, उनसे ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी, लेकिन कभी भी उनसे किसी ने पूछा आप हेड बन गए तो अभी आपका क्या चिंतन चलता है, कहती पहली बात तो मैं हेड नहीं हूं, मैं हेड समझूंगी तो हेडेक होगा। ये जब ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट चला, आप मानिए रोज वो आते थे, जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते थे उनको एनकरेज करते थे, टोली खिलाते थे, सबसे मिलते थे, रोज यहां आया करते थे। मधुबन जो हमारा पांडवन, ये सब बैरन लैंड था, यहाँ कुछ भी नहीं था। ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये उनकी विजन थी और कलेक्टिवली कैसे सबको इंस्पायर किया। तो मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी इंटेंशन क्या है। कोई भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी वृत्ति क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। अभी आप देखिए गीता में 5वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था, संन्यास योग बेहतर है या कर्म योग बेहतर है? तो भगवान ने उत्तर ये दिया कि कर्म योग, लेकिन उसके पीछे वृत्ति क्या है। हम जो भी सुन रहे थे आप सभी के अनुभव, आप सभी ने पूरी जीवन सेवा में गुजारी है, लेकिन सबकी वृत्ति ये थी कि जो मिशन है, जो कार्य मिला है, उसको हमें पूरा करना है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो आज हम देखते हैं, हमारे यूं कहें पूरी दुनिया में क्राइसिस है, वो है इंटेग्रिटी। हमारी इंटेग्रिटी कहाँ है, हमारे वैल्यूज क्या है? मिशन के साथ साथ हमारी वैल्यूज चाहिए, और वैल्यूज आती है अवेयरनेस से। अगर जब तक अवेयरनेस नहीं है तो हम जो मैनेज करना चाहते हैं उसको भी नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सबसे पहली अवेयरनेस यही मिलती है। जब मैं पहली बार यहाँ आश्रम में आया था, मेरी एज 11 इयर्स की थी, गुड़गांव में पिताजी थे हमारे, जॉब में थे, तो यही बताया गया था कि आप वास्तविकता में शुद्ध आत्मा हो। ये जो एडल्ट्रेशन आज हो गई है, मन में जो यूं कहें विकार जिन्हें हम कहते हैं, या यूं कहें जो कुरीतियां आ गई हैं, उसके कारण से, अदरवाइज हम सभी दिव्य आत्मा, एड्रेस किया अग्रवाल साहब ने सबको, है हम सभी डिवाइन, डिविनिटी इज इनहेरेंट विद इन अस, हम सभी डिवाइन है। लेकिन ये जो दुनिया का रंग चढ़ा, कंपनी, पीयर प्रेशर, ये सब उसमें हम बदल गए। तो सबसे बड़ी चीज तो मैं समझता हूं कि जो भी कोई भी मिशन है हमारा, अगर हम उसमें सबका सहयोग चाहते हैं तो हमें एक सर्वेंट लीडर बनना पड़ेगा। दादी जी हमेशा अपने आप को सेवादारी कहती थी, कभी उन्होंने अपने आप को हेड नहीं समझा। तो हम लोगों को ये मान के चलना होगा कि हम सब एक है। एक बार की कहानी है कि कॉरपोरेट में होता है, भाई एक सफाई कर रहा था तो वहां का सीईओ आया, तो उसने अपना हाथ जैसे एक्सटेंड किया, विदेश से आया था, तो उसने कहा मेरा हाथ तो डर्टी है। तो उसने कहा जो हैंड विच इज क्लीनिंग हाउ कैन इट बी डर्टी, जो क्लीन कर रहा है। तो इसलिए हम सब एक कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है वो कलेक्टिव परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। तो हमारी कॉन्शियसनेस में क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और फिर उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन चाहिए हमें। ये एक जब यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक एक्सपीरियंस हम रीलिव करते हैं कि हम ही एक समय सतो प्रधान थे, आज समय के अनुसार हम तमो प्रधान बन गए, हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। ये जो फिर से का मंत्र है ना, उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है कि मैंने ये काम किया हुआ है, मैं कभी था ऐसा। तो वो जो सतो प्रधान बनने की वृत्ति है, सतो प्रधान बनने की जो एनर्जी आती है, वो इस बात से आती है कि यस आई हैव डन इट बिफोर। और हमारे सामने रोल मॉडल है, साकार माध्यम जो शिव परमात्मा के बने, प्रजापिता ब्रह्मा, उनका जब हम जीवन पढ़ते हैं, उनकी जीवन कहानी को सुनते हैं। मैंने उनको जब छोटा था तो मैंने पत्र लिखा उनको, एक उन्होंने मुझे एक लाइन में उत्तर दिया। वो पत्र मैंने उनको लिखा कि बाबा मुझे पढ़ना है, सब लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो बाबा ने मुझे लिखा ये बच्चे भल पढ़ाई पढ़ो लेकिन दोनों बाप का नाम बाला करना। अगर हमारी बुद्धि में ये रहे कि हमें भगवान का नाम ग्लोरीफाई करना है, तो आप देखिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो भगवान का नाम हमें ग्लोरीफाई करना है, क्योंकि हम भगवान की संतान है, ईश्वरी संतान है। तो वो जो एग्जाम्पल्स, जो रोल मॉडल्स हमारे सामने रहे, जिनको हमने देखा, उससे जीवन में एक ऊर्जा भर जाती है। कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता, जैसे भाई जी ने सुनाया, हिम्मत चाहिए, पहला कदम। भगवान यही कहते हैं कि पहला कदम तुम्हारा तो 1000 कदम मेरे, तो फर्स्ट स्टेप हमें उठना है, हमें करेज करना है, करेज के साथ कन्विक्शन चाहिए, करेज के साथ कंसिस्टेंसी चाहिए। जब ये सब चीजें होती हैं तो कोई भी आप अपने आप के साथ आप चलते हैं, आपके साथ हजारों लोग हो जाते हैं। जब हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया था, मैं अगस्त 91 में आया था, तो अक्टूबर 91 में कमीशन किया, हम लोग सिर्फ 30 लोग थे तब, और आज हॉस्पिटल की ग्रोथ होते होते हम लगभग 700 हैं माउंट आबू में हॉस्पिटल। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा आई हॉस्पिटल शुरू किया, वो भी देखिए क्या होता है। एक अखबार में मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ असिस्टेंस दे रही थी, जस्ट अप्लाई कर दिया। वो जमाना था, वो अप्लाई एप्लीकेशन से ही उन्होंने देखा कि सिरोही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने हमें ग्रांट दे दी। उस समय 45 लाख की ग्रांट थी 93 में, तो आई हॉस्पिटल शुरू किया। आज आई हॉस्पिटल भी वो इतनी अच्छी सेवा कर रहा है। उसकी भी जैसे एक स्टोरी होती है, एक भाई मिस्टर परमार थे, उनके गांव में हम केवल कैंप करते थे, निस्वार्थ आए कैंप। एक दिन मेरे ऑफिस में आए अपनी चेकबुक लेके कि मुझे डोनेशन देने। मैंने कहा परमार साहब मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पेशेंट्स के रहने के लिए व्यवस्था। तो उन्होंने 1.5 करोड़, 5 लाख देने के लिए आए थे, 1.5 करोड़ का हॉस्पिटल बना के दिया। तो भाव ये कि जब आपकी वृत्ति शुद्ध होती है, जब आपका लक्ष्य आपके माइंड में क्या है, तो सहयोगी तो बहुत बनते हैं। और हम ये जो नया कार्य शुरू किया है, वो भी उसकी प्रेरणा भी हमारे निर्भय भाई थे, जो संस्था के सेक्रेटरी जनरल भी थे, मैनेजिंग ट्रस्टी भी थे, ग्लोबल हॉस्पिटल के बड़े भाई भी थे। उनको लगा जब कोविड में यहाँ क्या हुआ, कोविड में यहाँ इतने लोग अटक गए थे, लगभग 5,000 लोग यहाँ रुक गए थे, उसमें फॉरेनर्स भी थे, इंडियंस भी थे, जैसे सडन लॉकअप हुआ, तो अगर उनकी हेल्थ नीड्स होंगी तो कहाँ जाएंगे। तो तब से उनके माइंड में बैठा हुआ था कि यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए, 250 बेड चाहिए, वो बार बार मुझे कहते थे। तो अभी हमने उसका कार्य आरंभ किया है कि उसमें स्पेशलिटीज हो, कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, काम बहुत बड़ा है। रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हो, रिसर्च सेंटर भी हो, नर्सिंग कॉलेज का एक्सपेंशन भी हो, अनदर ओल्ड एज होम भी बने, बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन जैसे सुना रहे थे, सबके सहयोग से सुखमय सेंस, ये जो हॉस्पिटल भी बना था उसमें ब्रह्मा कुमारीज का एक प्रोजेक्ट था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो हम सब मिलकर, और जिस भी संस्था को हम लीड करते हैं या वहां भी हैं, जब एक बार इरादा नेक होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। हमें केवल अपने आप को तैयार करना है। सेवा की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, सेवा की अपॉर्चुनिटीज आएंगे, लेकिन हमारी अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएं, हमारी अपनी योग्यताएं बढ़ती जाएं, तो सेवा भी होगी और लोग भी साथ में मिल जाते हैं। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी। सो आई एम श्योर वी हैड अ वेरी एनरिचिंग सेशन। यस, सो बाय शो ऑफ योर हैंड, यस वी आर ऑल वेरी हैप्पी दैट जो पैनल यहाँ पर है, हम सबको बहुत सारी मोटिवेशन भी हुई एंड बहुत पॉजिटिविटी भी मिली, और साथ में वी आर ऑल एनरिच्ड बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पैनलिस्ट।
कहना चाहूंगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन का है, इंजीनियरिंग का है। आप में से कोई भी लोग सहयोगी बनना चाहें, अपना समय देना चाहें, आके हमें मदद करना चाहें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मोस्ट वेलकम।
तो बहुत सुंदर है कि अभी तो कंस्ट्रक्शन ही चालू करना है, तो ये भी भगवान कैसे योग जुड़ाता है। देखिए कि सारे इतने अनुभवी बैठे हुए हैं कंस्ट्रक्शन के एरिया वाले, सो मेनी इंजीनियर्स। डॉक्टर्स बाद में आएंगे, पहले वी नीड इंजीनियर्स। सो ऑल ऑफ यू कैन यू नो अपने हिसाब से,
और खासकर भाई साहब के साथ मुझे भी बीच बीच में बड़ा उमंग आता है सहयोगी बनने का। तो खासकर मैं बताना चाहूंगा, कोई कॉरपोरेट तो जुड़े भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 50 एकड़ तो हमारा लैंड है, जो हमने पहले ही काफी पहले से खरीदा हुआ था, तो उस पर अब शुरू कर दिया है। और उसमें हमें जैसे ONGC सहयोगी बनी है, लेकिन आज काफी कॉरपोरेट के भी आए हुए हैं, CSR को भी डील करते हैं, इंडियन ऑयल ने भी यहाँ सहयोग दिया कुछ MRI मशीन लगाने आदि में। इस तरह मेरा मतलब आप सब भी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट में जुड़े हुए हैं, तो भ्राता जी ने आह्वान किया है कि इसलिए आप सब के इसमें सहयोग की उंगली लगेगी। ये तो पब्लिक के लिए है, तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है। हम सब भाई साहब का संकल्प जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
वैसे भी कहते हैं ना, दान करना चाहिए, जिस चीज की कमी होती है उसका ही दान करना चाहिए ना, तो फिर वो ठीक हो जाती है। आजकल तबीयत का मामला हर एक के पास है ना कोई चीज, कभी ये तबीयत ठीक नहीं, कभी ऐसे ठीक नहीं, तो हॉस्पिटल तो बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। तो जैसे दादी प्रकाशमणि जी की बात भाई साहब ने कही, भाई साहब ने भी कही, प्रताप मिड्ढा भाई जी ने, मुझे भी याद आया, मना शी वॉज ऐसे लीडर थे कि वो जोर से कुछ बात नहीं करना, ऐसे नहीं, सिर्फ बहनों से भी, हम तो इतनी छोटी बहनें, हमको कहते थे सखियां, हम कहते थे दादी आप दादी हो, नहीं आप मेरी सखियां हो, आप हम सब भगवान के हाथ है और भगवान के हाथ मिल करके कार्य करेंगे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। कहा है दादी जी का फोटो? अच्छा अच्छा, यहाँ जो आप ऑडियंस बैठे हैं, ये किसकी? अच्छा, ये मनमोहिनी दीदी जी की फोटो है और वहां जो है दादी प्रकाशमणि जी की फोटो है। तो जब प्रजापिता ब्रह्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, तो दादी जी का हाथ अपने हाथ में था उस समय, दादी जी उस समय इधर ही थे, और जैसे कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियां दादी जी को सुपुर्द की और फिर उन्होंने देह त्यागी। सो फ्रॉम 1969 टिल 2007 कोई छोटा समय नहीं है, बहुत बड़ा समय है, एंड जिसमें समाज में कितने परिवर्तन, 60s का समाज कैसा, 70s का समाज कैसा, 90s का कैसा, एंड 2000 का समाज कैसा, लेकिन सबको साथ, कलेक्टिवली सबको साथ लेकर चलना। नहीं तो आजकल देखिए, यू नो वी हैव दिस थिंग कॉल्ड जनरेशन गैप, जेन आई डोंट नो अल्फा एंड समथिंग इज कमिंग बैक, वी नन ऑफ अस बिलोंग टू दैट जनरेशन। सो आज की दुनिया में, यहां छोटे से बच्चे हैं, दे विल टॉक ऑफ समथिंग। सो आज की दुनिया में व्हेन वी से गैप गैप गैप, दादी जी वॉज द वन, एंड नॉट ओनली दादी प्रकाशमणि जी, जो भी ब्रह्मा कुमारी की दादियां हैं और हमारी अभी जो दीदियां हैं, दे हैव दिस ग्रेट एबिलिटी टू टेक एवरीबडी टूगेदर। नहीं ना, आने तो आजकल के बच्चे, वी से दैट आजकल का युवा, हमारा जमाना, दीज आर द वर्ड्स विच वी यूज ऐसे, लेकिन दादीज वुड ऑलवेज टेक एवरीबडी विद देम और सबको समझ करके जिसको जिस प्रकार की सेवा कर सकता है उस प्रकार की सेवा उनको सुपुर्द करके, कभी छोटे कभी बड़े। अभी फॉर एग्जांपल जैसे आप शिवानी बहन का आप सुन रहे थे, वो तो कितने यंग है ना इन कंपैरिजन टू द दादीज, मतलब आप सोचिए इतने हेड ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज फ्रॉम 1937 दे हैव बीन विद द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक बहन उसको यू नो विदाउट द सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डू यू थिंक वो इतना जो है वहां जो करते हैं सेवाएं, तो ऑर्गेनाइजेशन से बड़ों से कितना उनको सपोर्ट, कितना आशीर्वाद जो है, जो उनकी कला जो है वो इतने उभर करके सबको फिर दुनिया को मदद कर रही है। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉब्लम हो जाए, सीनियरिटी जूनियरिटी, मतलब शीज हमारे जो है ना हमारे उसके है जैसे कॉन्टेम्प्रेरी कह सकते हैं, लेकिन सीनियर्स कितने बैठे हुए हैं। कल आशा दीदी थे, तो सो मेनी ऑफ देम आर देयर, लेकिन नहीं, कार्य भगवान का है। जैसे भाई साहब कह रहे थे, प्यूरिटी ऑफ इंटेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड जहां वो प्यूरिटी होती है, वेयर देर इज प्यूरिटी, ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन है, वेयर देर इज प्यूरिटी देर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्लीज मार्क द वर्ड्स, पीस टू एवरीबडी टॉक, बट आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज जनरली पीपल थिंक अरे जहां स्पिरिचुअलिटी है मतलब त्याग ही त्याग है, छोड़ना ही छोड़ना है, खोना ही खोना है, ना पिन पर जनरली हैव दैट, इस प्रकार की सोच होती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली लीड्स यू टू अबंडेंस, क्योंकि जहां मन भरपूर है वहां जो भी जरूरत है, जो कुछ भी है, जो भी रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाता है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, तथास्तु नहीं है, फिर वही हो जाता है। है, है, हो जाएगा, बहुत अच्छा है भाई साहब, बहुत अच्छा है भाई साहब का स्लोगन।
मंत्र सबको याद है ना? क्या मंत्र था? अच्छा, सब अच्छी तरह बोलो। सच्चाई से जिसने घर में फोन किया कृपया हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया तो अब करना, रात्रि भोजन से पहले घर में फोन करना। सुनो, मुझे आपको एक बात बतानी है। कि क्या? कि आप ना बहुत अच्छे आनंद आएगा। और वंडरफुल ये हुआ, एक भाई आज मिले, कहते मैंने जिंदगी में कभी अप्रिशिएट किया ही नहीं था बच्चे को, कभी नहीं किया। और जब मैंने आपने कहा और मैंने फोन किया कि बेटे मुझे तेरे को एक बात बतानी है। क्या? क्या? बेटे तेरे में ना ये बहुत बड़ी शिफ्ट है और ये बहुत बड़ी कला है, रियली तुम बहुत अच्छे। पापा आप ठीक तो हैं? ठीक तो कहते ठीक है पापा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप तो जिंदगी में कभी नहीं अप्रिशिएट किया? क्या वो संकल्प कराया भाई साहब ने, इसलिए अब मैं रोज तुझे किया करूंगा। उन्होंने कहा रोज एक बार करना है, तो आप इस संकल्प पे पक्के रहना, फिर देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, अपने आप को भी कहना है क्या, मैं यूनिक हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, विशेषता दी हुई है भगवान ने। थैंक यू, ओम शांति।
तो ये फोन की बात आई तो मैं मेरा भी अनुभव एक सुनाना चाहती हूँ। एक पुलिस डिपार्टमेंट में चल रही थी क्लास हमारी, 600 थे भाई। तो मैं ऐसे ही कह रही थी पुलिस हो तो क्या हो गया, बट स्टिल यू कैन टॉक सॉफ्टली एंड स्वीटली। तो एक को तो बहुत लग गई वो बात, बहुत लग गई अंदर में। अगले दिन वो आता है, सभा चल रही थी, कहता है दीदी मैं ना लास्ट में अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ। अब मैंने कहा वो सब सभा में उसने पूछा तो ना तो नहीं कर सके। मैंने कहा भेजना, आइए लास्ट में आप सुनाइए। कहा आपने कहा ना स्वीटली बोलो, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो। ठीक है, मैंने ना घर में फोन किया और मेरी युगल वाइफ ने फोन उठाया और मैंने कहा कैसे हो, उन्हें फोन कट कर दिया नहीं, आई एम टेलिंग आई एम नॉट एट ऑल दैट वन, कट कर दिया। तो इसने फिर मिलाया, बोला मैं हूं मैं। तो बोला ये क्या हो गया है आपको ना, क्योंकि उसको जो आदत थी मतलब तेलुगु में एंटी मतलब क्या है, और वो पुलिस वाला बात करने का टोन, डील करते करते लोगों से कितना रफ जो है वो हो जाता है, उसको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसने कहा देखो ये क्लास चल रही है और इस क्लास में हमको समझाया गया। बोला और अच्छे से सुन करके, वाइफ ने कहा अच्छे से सुन करके आ जाना करके। मतलब देखिए जिसका अनुभव है, जिसने अपने हस्बैंड को उसी तरीके से देखा है तो वो चेंज होता है उसमें, उसको भी शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया है करके। तो यू नो वी हैव टू लुक एट ईच पर्सन, हरेक जो भी हमारे साथ रहते हैं उनकी अच्छाई को मन में रखते हुए उनको देखना है। एज ऑफ नाउ मे बी ऐसे हैं, बट डेफिनेटली क्योंकि सब तो भगवान के ही बच्चे हैं तो सब में अच्छाई है ही है। तो इस प्रकार से अच्छाई ही अच्छाई है। तो अभी अंत में हमारे गेस्ट को हम गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे।